Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Vibhuti Mishra.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में पूरी जानकारी. आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीप शिखा सिकरवार. दीप शिखा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद विभूति जी.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी.
थैंक यू विभूति. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड इन रेड फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन. सेंसेक्स क्लोजेस एट 74,503. निफ्टी सेटल्स एट 22,705. इंडियाज इकोनॉमी सेट टू ग्रो बाय 7.4% इन क्वार्टर फोर ऑफ 2023-24, सेज एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च यूनिट. एंड ब्रेंट क्रूड एंड डब्ल्यूटीआई क्रूड ट्रेडिंग अबव $80 पर बैरल इन ग्लोबल क्रूड मार्केट.
लगातार चौथे दिन प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 74,503 और निफ्टी 22,705 पर बंद. एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च यूनिट का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही में 7.4% की दर से बढ़ेगी और वैश्विक कच्चा तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड $80 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहे हैं. और सबसे पहले शेयर बाजार की खबर. वैश्विक शेयर बाजार की नकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार चौथे दिन गिरावट रही. बीएसई सेंसेक्स 668 अंक या 0.89% गिरकर 74,503 पर बंद हुआ. निफ्टी 183 अंक या 0.8% गिरकर 22,705 पर बंद हुआ. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.38% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.23% की बढ़ोतरी हुई.
सेंसेक्स एंड निफ्टी फेल फॉर द फोर्थ डे इन अ रो अमिड नेगेटिव क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल शेयर मार्केट्स. The BSE Sensex shed 668 points or 0.89% to close at 74,503. The NSE Nifty dropped 183 points or 0.8% to settle at 22,705. In the broader market at the BSE, the mid-cap index decreased by 0.38% while the small-cap index added 0.23%. In the Sensex Index, which is a pack of 30 companies, shares of 24 companies appreciated while stocks of 6 companies declined. The top 3 gainers were Power Grid, which rose 1.52%, Sun Pharma 0.92%, and shares of Nestle India rose by 0.7%. On the other hand, Tech Mahindra dipped 2.35%, ICICI Bank 2.2%, and Axis Bank lost 1.92%, which were the 3 major laggards today. In sectoral indices at the BSE, 7 sectors registered gains, 13 witnessed losses. Telecommunication and healthcare rose 0.31%. Power, utilities and industrials registered above 0.2%. On the other hand, BankEx fell 1.37%, financial services dropped 1.32%, and oil and gas slid 0.95%. The overall market breadth was negative as shares of 1,680 companies advanced, while 2,136 companies declined and shares of 113 companies remained unchanged.
और रुपये का हाल जानते हैं. मुद्रा बाजार में स्थानीय कॉर्पोरेट की ओर से डॉलर की मांग के कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे फिसल कर 83.17 रूपये पर बंद हुआ, जबकि डॉलर सूचकांक 104.5 अंक से नीचे फिसला है.
दीपशिखा, वी सी टुडे इज द फर्स्ट डे, द फोर्थ सेशन इन अ रो व्हेन द सेंसेक्स एंड द मार्केट्स हैव यू नो एंडेड इन रेड. Of course, like we said, there are global, reasons for it. Global share markets ending in red, which we will discuss later on. But apart from that, what are the other major reasons do you see for the market's behavior?
Anubha, you know, in few days from now, India would be electing its new government, and definitely I think the market is sort of is jittery. Although, you know, if you look at the indications, there is likelihood of policy continuity and so on and so forth. There is no nervousness on that count. But I think pre-elections, there is a bit of nervousness in market, which is sort of being seen. Also, the other factor, if you see, is markets touched, reached 76,000. So, obviously, people would book profits at some levels, and that also is having its impact. So, while, you know, there are global cues which are having an impact on India, but I think there are these domestic factors which are also playing out.
And would you say that when we talk about the fact that you're saying that, you know, of course, election results are around the corner with the last phase of voting still left on 1st June. So would you say that, and it's not the first time for the last 1 month or more than a month for that matter, we have been seeing volatility in the market. So would you say that this volatility is likely to continue then in the coming days, maybe even once the, you know, election results are out?
You know, it would depend on the results.
Yes.
So I think if there is a strong mandate for the government, definitely the markets would react more positively. And we've seen that happen in the past as well. Definitely if it's a fractured mandate, markets would be more nervous. So you'll see more volatility. So this current indication, and if you see, you know, over the past months, the fact that markets rallied, they reached 76,000. So definitely there is, markets seem more positive about the results and about the policy continuity going forward, and which is getting reflected. And also if you look at the economic performance, you know, the indicators, they've been fairly robust, they've been fairly positive. So that side is also sort of playing on the market sentiment.
So would you say that the retail investor should not be, you know, actually should not be so worried about the hiccups here and there, so to speak, and just continue to be, you know, believe in the markets, because markets have been robust, like you said?
I would say, you know, be cautious around this time because there is a lot of volatility. And I would say, you know, because markets reached 76 and people started booking profits, so maybe people are also sort of waiting and watching. You know, people are sitting on funds, institutions are also sitting on funds, waiting for the outcome of the elections before they start investing and before they start, you know, taking newer bets.
चौथे दिन लगातार गिरावट है और आप कह रही हैं कहीं न कहीं से जो चुनाव आने वाला है उसका मतलब वो लोगों के मन में है, सतर्क हैं लोग कहीं न कहीं से. सरकार कोई भी आएगी वो नहीं चाहेगी कि हमारा जो शेयर बाजार है जो है उस पर कुछ फर्क पड़े. तो ये सतर्कता जो लोगों में दिख रही है या जो भी अनुमान हम कर रहे हैं उसके आप उसको कितना सही देखती हैं, इस समय निवेश करने में क्या बचना चाहिए? और दूसरा मेरा सवाल ये भी रहेगा कि पिछले एक साल में मिड कैप इंडेक्स में 82% का रिटर्न लोगों को मिला है, हालांकि जोखिम भी है उसका, उसको लेकर क्या कहेंगे?
विभूति जी, जैसा कि मैं पहले कह रही थी, इंडेक्स जो है आपका 76,000 पे पहुंच गया था, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है. अब लोग जो है नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आउटकम होगा इन चुनावों का, उस हिसाब से वो अपनी बेट्स लेंगे. तो जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूशंस भी इंतजार कर रहे हैं, बड़े निवेशक भी इंतजार कर रहे हैं. तो जो रिटेल निवेशक भी हैं उनको भी थोड़ा कॉशियस होकर के ही अपने इन्वेस्टमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. और दूसरी बात है कि जो जहां पे वो निवेश कर रहे हैं वो क्षेत्र जरा उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के वो स्टडी कर लें कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी सरकार होगी उसका फोकस रहेगा, क्योंकि आपको अगर ग्रोथ को बूस्ट देना है उसको आप फोकस किए हुए बगैर आप आगे नहीं ले जा सकते हैं देश को. तो जो क्षेत्र, जो सेक्टर्स और जो कंपनियां इन क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई हैं वो क्षेत्र आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे. दूसरा, अगर आपने देखा IMD का फोरकास्ट है कि मॉनसून जो है अच्छा रहेगा। तो मॉनसून की वजह से एफएमसीजी और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो कंपनियां जुड़ी रहती हैं और डिमांड को जो सपोर्ट डिमांड का असर जिनके ऊपर पड़ेगा, एफएमसीजी कंपनियां हैं, रिटेल क्षेत्र की कंपनियां, उन क्षेत्रों पे थोड़ा देखें, ध्यान लगाएं। मिड कैप के लिए आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मिड कैप का, और ऊपरी जो टॉप कंपनीज हैं सिर्फ वो नहीं, पूरा इंडेक्स जो है वो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा था। तो अगर नतीजों के ऊपर काफी हद तक ये निर्भर रहेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है, इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, तो मिड कैप के लिए भी ऐसा लगता है कि आउटलुक जो है वो अच्छी ही है।
जी, फिलहाल जो है अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है फिलहाल नहीं दिख रहा है, फिलहाल आमतौर पे अभी कुछ ऐसी ठीक है, रफा में अभी 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 हमले हुए हैं, और लेकिन उस तरह से नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था और लगातार उसका इम्पैक्ट भी हम देखते थे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार गिरावट के बाद आम धारणा रहती है कि अब मार्केट पक्का ही उठेगा, लोग सोचते हैं ऐसा। तीसरा सवाल जो कि मौसम को लेकर जो आपने पूछा है, जो आपने बोला है अभी, तो अत्यधिक गर्मी देश के किसी हिस्से में, कहीं अत्यधिक वर्षा, बाजार में थोड़ी हलचल कम हो जाती है, इसका कितना असर पड़ता है?
देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है, सबसे पहले मैं इसी पर बात करूंगी, क्लाइमेट चेंज एक अब एक सच है जो हम सबको, मतलब हमारे सामने है, और उसका असर अब हमें दिख रहा है। अगर आप दिल्ली ही देखें तो आज 52 तक टेम्परेचर गया है, कहीं पर उसके बाद बारिश भी हो गई। तो ये जो अनियमितताएं जो आपको दिखाई दे रही हैं क्लाइमेट में, ये हर जगह महसूस की जा रही है, तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही। लेकिन अगर इमीडिएसी की बात करें, तो हम जहां मानसून की बात कर रहे हैं, तो गर्मी तो पड़ ही रही है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मानसून का फोरकास्ट देखें, वो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जाहिर तौर पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके बाद कृषि आउटपुट क्या, आपका प्रोडक्शन कैसा रहता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके इन्फ्लेशन, आपकी ग्रोथ, आपकी डिमांड को वो तय करेंगे कि मानसून अगर अच्छा हुआ तो इन सारे फैक्टर्स पे क्या असर होगा। फ्लडिंग होती है, लेकिन फ्लडिंग जो है वो भी अगर आप देखें तो कुछ कुछ इलाकों में रहती है, वो ऐसा नहीं होता है कि पूरे देश में स्प्रेड आउट हो रही है, तो उसका असर होता है लेकिन बहुत लिमिटेड पीरियड्स के लिए होता है, तो उसका ऐसा वाइडर इम्पैक्ट जो है वो नहीं है। लेकिन मॉनसून अगर अच्छा होगा तो एक वाइडर देश के लिए उसका इम्पैक्ट है, देश की कृषि के लिए इम्पैक्ट है।
Deepshikha, you just, you know, when we were discussing, you said, of course, in reply to Vibhuti, that infrastructure is one sector, because that is irrespective of the results or whoever forms the government, whichever government forms. Infrastructure is something that every government would, you know, pay attention to, and therefore, as an investor, that is also one of the sectors that we should be, you know, aiming at or looking at. So what are the other sectors that you think are going to be, you know, the focus should be on?
So infrastructure, definitely, you know, there is a capex plan in place already. Yes. There are a lot of projects underway, so that will obviously, you know, be in focus. And infrastructure sectors, sectors that support infrastructure creation, cement, steel, all those sectors will be sort of in focus going forward. On the other side, you know, we've seen, because of the government's capex you know, push which we've seen over past few years, private investment is sort of kicking in, and capital goods sector, you know, when private sector also starts investing, capital goods sector will also see a bit of, you know, movement there. Right. So definitely those sectors, and if the demand continues, so consumption. So all the consumption sector, FMCG would definitely, and FMCG immediately sees the impact, you know, if monsoon is very good. Automobile sees immediate impact if monsoon is very good. So these are the sectors, I think, going forward, they will be in focus.
जी, दीपशिखा जी, बिजनेस और व्यापार जगत की खबरों पे आपकी बाइक नजर रहती है। ऐसे श्रोताओं के लिए जो कुछ जानना चाहते हैं व्यापार जगत के बारे में, एक मेरा अलग सा सवाल है, सवाल ये है थोड़ा सा कि शेयर बाजार का किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है, और वैसे देश जो कुछ अफ्रीकी देश हैं जहां शेयर बाजार ही नहीं है तो उनका कैसे क्या कंट्रोल होता है, इसको बिल्कुल बताएं।
देखिए, शेयर बाजार जो है कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक बैरोमीटर है, मतलब एक टेस्ट रहता है कि इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, लेकिन कई बार अर्थव्यवस्था एक अलग दिशा में होती है और शेयर बाजार अलग दिशा में जा रहा होता है। लेकिन ब्रॉडली क्या है कि शेयर बाजार एक माध्यम है निवेशकों के लिए भी और दूसरा व्यवसाय जगत के लिए पैसा उठाने का, क्योंकि आप जब निवेश कर रहे हैं तो एक आप उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, आप कंपनी लगाते हैं, आप उसको एक लेवल तक लाते हैं, उसके बाद आप उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो देश की जो प्रगति है, देश की जो ग्रोथ है और व्यवसाय जगत की जो ग्रोथ है, उसमें शेयर बाजार का एक काफी हिस्सा है। वेल्थ क्रिएशन में शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह से निवेशक उससे जुड़े रहते हैं। तो जिन कंट्रीज में अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है वो एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट के स्टेज पर हैं, और हम जानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर है, उसको और उनको सपोर्ट देने की जरूरत है, और वही किया भी जा रहा है। अगर आप देखें विभिन्न एजेंसीज जो है, IMF, वर्ल्ड बैंक या भारत भी जो है, भारत का जो साउथ फोकस है उसमें भारत जो है बहुत सारे देशों की मदद कर रहा है इस तरह की स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए।
एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। 5 एशियाई प्रमुख सूचकांकों में से 4 आज घाटे के साथ बंद हुए। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.05% की मामूली बढ़त रही, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.86%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7%, जापान का निक्केई 0.77% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.21% लुढ़क गया। सभी 3 यूरोपीय प्रमुख सूचकांक अंतिम समाचार मिलने तक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डैक्स 0.7%, लंदन का फुटसी 0.3% और फ्रांस का कैक 1.1% नीचे कारोबार कर रहा था। दीपशिखा जी, यूरोप का सुन लिया आपने, एशिया का सुन लिया आपने, क्या इश्यूज हैं, वहां के लोकल इश्यूज हैं या फिर आपको क्या लगता है इसमें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कुछ भी दिख रहा है, थोड़ा चीन और ताइवान का भी सुना है आपने, थाईलैंड की भी एक छोटी सी खबर आई थी, और फिर जो मिडिल ईस्ट है उसका तो है ही, क्या असर क्या है इसमें?
देखिए, एशियाई और यूरोपीय बाजार दोनों में ग्लोबल फैक्टर्स तो रहते ही हैं, और आज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें, अमेरिकी मार्केट भी देखें, तो वहां पर भी जो कंजम्पशन डेटा है वो आने वाला है, उसको लेकर के थोड़ा सा नर्वसनेस है, क्योंकि लोग अब चाह रहे हैं कि दिशा जो है कि अगर रेट कट आ रहा है तो वो कब आ रहा है, उसके टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा उत्सुकता है और वो दिखाई देती है। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में, यूरोप में भी और एशिया में भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जब कोई मसला होता है तो उसका असर आता है, एक सेंटिमेंट असर करता है। मुझे लगता है कि जैसे आज चीन का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसका ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाया है, प्रोजेक्शन को बढ़ाया है, उसका शायद कुछ पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि एशिया के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है चाइना की अर्थव्यवस्था से बहुत लिंक्ड है, तो उसका शायद असर आने वाले दिनों में इन मार्केट्स पे हो सकता है।
मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द नैसडैक क्रॉस्ड 17,000 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन ट्यूसडे, व्हाइल द S&P 500 क्लोज्ड बेयरली हायर एंड द डाउ एंडेड लोअर एज ट्रेजरी यील्ड्स रोज। नैसडैक गेन्स 0.59%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एडेड 0.55% and the S&P 500 inched up 0.02%. Deepshikha, what are the reasons you see that Nasdaq crossing the, you know, 17,000 mark for the first time ever? What are the reasons for that?
Basically, see, I think now the atmosphere or the entire sentiment is building around the rate cut. The indications are it is coming sooner than later. If the numbers, go all right, if the data, fresh data, whichever comes out, also gives that direction. But I think directionally the markets are pricing in a rate cut, and that is what we are seeing in the U.S. markets right now.
Now, you mentioned rate cuts, that markets are pricing in rate cuts, but I was just reading today that the Federal Reserve Bank of Minneapolis president, Neel Kashkari, has in fact said that officials should wait for more evidence that inflation is cooling before cutting interest rates. In fact, he has said that, it may happen that the U.S. central bank's policymakers entirely haven't ruled out additional interest rate hikes. What do you say to that?
I think if you see the past statement of Fed, I think they have given a more clearer, I think, statement and clearer indication of that probably the rate cut is likely. But of course, any decision would be data driven. So unless, you get clarity from the data that directionally this is happening and this could happen sooner than later, I think that nervousness would be seen in the market. So if you see, S&P closed like barely higher, Dow ended lower.
Yes.
So there is a bit of nervousness also in the market which is showing, despite this expectation of a rate cut.
Right. Moving on, India's economy likely grew by 7.4% in the fourth quarter of the financial year 2023-24, says the SBI's Economic Research Unit's EcoRap note. The research unit of the public sector bank says that the GDP of the financial year 24 is likely to touch 8%. The report released on Tuesday is also in line with the Reserve Bank of India's estimates for the fourth quarter of the financial year 24. The RBI estimates have put real GDP growth forecast at 7.3% for quarter four of financial year 23-24, the first quarter of financial year 25 growth at 7.5%, and full financial year 25 economic growth at 7%. It is to be noted that India's economic growth rose to 8.4% in third quarter, 7.6% in second quarter, and 7.8% in first quarter of the financial year 24. The government will announce the GDP estimates for the fourth quarter and fiscal year on 31st May. Across the rural and urban landscapes, there is secular growth trend, especially in rural areas. Incremental growth is picking up. Diesel consumption and two-wheeler sales are showing an uptick in rural economic momentum, says the report. On the other hand, the report adds that passenger vehicle sales, airport passenger traffic, GST collection, credit card transactions, petroleum consumption and toll collection are all indicating improved urban economic momentum. Deepshika, we were discussing, of course, about the rural economy and the monsoon a little while ago. And the SBI report now is saying that it's likely to have grown by 7.4%. So overall, how do you see if you look at the whole financial year 23-24, how do you see the economic growth that has happened?
I think if we've seen economic recovery that picked up post-COVID remained very robust, and it picked up momentum in the last year, and we've seen very robust growth which beat all expectations. SBI's estimate is much more positive than a lot of others, I would say, because other economists are not saying it would be 7.4 and they are giving a lower projection for it. But going by the SBI estimate also, and if you look at the past three quarters, growth has been by far very good, and even the high frequency indicators, if one sees their performance has remained very, very robust. So the indications are India remains on a high growth path now. And if it continues, if the factors that we discussed a bit earlier, good monsoon, continued investment, pickup in private investment, all these factors would definitely go towards, sort of pushing up country's growth.
And today, the rating agency S&P has revised the outlook for the Indian economy from stable to positive, while affirming the overall rating at BBB-, which represents the lowest investment grade rating. So if you look at this rating that has been revised by S&P, the outlook from stable to positive, what does it mean and what are the reasons for it?
Anuma, this, upgrade has come after 14 years. So definitely, it's a huge positive for India. It's it signals that we could possibly be closer to a rating upgrade, although S&P has said they would keep a close watch on, you know, factors like the debt-to-GDP ratio, fiscal deficit, and, you know, of course, government spending and growth before they upgrade. But an upgrade of this sort, even in the outlook, is usually positive because it takes you closer to rating upgrades. It means that the rating agency has taken note of all the positive actions that you've taken, and S&P's sort of pointed it out, you know, better public expenditure management, and of course, you know, this growth momentum that has been seen in the country, and the investment policies. So all these factors have been cited by the agency for the upgrade.
But it has also affirmed the overall rating at BBB-, which represents the lowest investment grade rating. So what does that mean? And if we are going from stable to positive, will it affect our investment grade rating also?
No, so like I said, the investment grade rating that has continued for quite some time, and I think that is one issue which India has been taking up with rating agencies, because a lot of other countries, they have been given a higher rating, having a lower GDP or even a high debt to GDP ratio than India. But rating agencies have their own formulation and they go by that. But definitely, like I said earlier, the upgrade in the outlook definitely sort of takes you closer to a rating upgrade if you keep working on the factors which are cited by the agency. So definitely a huge positive for India coming from the S&P right now.
Right. Moving on to commodities, oil prices rose more than 0.5% in global crude market. Brent crude increased by 0.70% to $84.81 a barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI also increased by 0.78% to $80.45 a barrel when reports last came in.
और अब जो है सोना और चांदी का हाल जानते हैं. सोने की कीमत आज थोड़ी कम हो गई अंतिम समाचार मिलने तक. 5 जून 2023 अनुबंध के लिए सोना 0.25% की गिरावट के साथ 71,999 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर 5 जुलाई 2023 अनुबंध वाली चांदी में आज 0.22% की तेजी आई और अंतिम समाचार मिलने तक यह 95,660 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. दीप सुखा जी, सोना और चांदी का जो हाल है, इसमें जो वृद्धि देखी गई है वो बड़ा ही अप्रत्याशित है, कमाल का है. आने वाले समय में आप इसको लेकर के अगर कुछ अनुमान की बात करें तो क्या कहेंगे आप?
ये सोना और चांदी जो है बहुत सारे अनुमानों से काफी आगे निकल गया पिछले कुछ समय में, हमने देखा है. लेकिन देखिए, सोना और जो है खासतौर से जो जिस उसकी कीमत को जो मतलब बल मिला है, अगर हम देखें तो चीन जो है, चीन ने बहुत सोने में खरीदारी की है, और भी जो आपके सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने भी सोना खरीदा है. चीन ने अपना जो होल्डिंग था यूएस ट्रेजरी से कम करके धीमे धीमे वो सोने की तरफ ज्यादा किया, तो उसकी वजह से ये खास तौर से तेजी देखी गई थी. चांदी में भी, अगर आप सिर्फ चांदी न लें, बाकी भी मेटल्स अगर आप लें, बाकी मेटल्स में भी तेजी देखी जा रही है. तो एक तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो प्रेशियस मेटल्स को ड्राइव कर रहे हैं. दूसरी तरफ जो है इंडिकेशंस है, और आज तो आईएमएफ का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन आया चाइना की अर्थव्यवस्था को लेके, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद चाइनीज अर्थव्यवस्था में टर्न अराउंड हो रहा है, तो मेटल्स में वो तेजी, बाकी मेटल्स में वो तेजी आ रही है कि हो सकता है डिमांड को उससे बूस्ट मिले.
जी दीपशिखा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड डिस्कसिंग. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end in red for fourth straight session. Sensex closes at 74,503. Nifty settles at 22,705. Indian economy set to grow by 7.4% in fourth quarter of financial year 23-24, says SBI Economic Research Unit. And Brent crude and WTI crude trading above $80 per barrel in global crude market. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
Namaskar. We'll be right back.
Market Hunter.